नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। कहा यह देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मकर संक्रांति का त्योहार आज पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर किया पहला अमृत स्नान। और प्रदेश के मौसम में एक बार फिर आया बदलाव। दिन भर बनी रही कुहासे की स्थिति, अगले 3 दिनों के बाद ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बनाने के लिए आज मिशन मौसम का शुभारंभ किया। मिशन मौसम का उद्देश्य अत्याधुनिक मौसम निगरानी तकनीक और प्रणाली विकसित करना है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय मौसम विभाग के 150वें स्थापना दिवस पर आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि मिशन मौसम एक टिकाऊ भविष्य और सतत विकास की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
मौसम विभाग की विश्वसनीयता भी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ी है। भविष्य में भारत मौसम की हर परिस्थिति के लिए तैयार रहे, भारत एक क्लाइमेट स्मार्ट राष्ट्र बने, इसके लिए हमने मिशन मौसम भी लॉन्च किया है। मिशन मौसम सस्टेनेबल फ्यूचर और फ्यूचर रेडीनेस को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का भी प्रतीक है।
प्रधानमंत्री ने विभाग की 150 वर्ष की यात्रा की प्रशंसा करते हुए इसे देश में आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी का एक गौरवशाली अध्याय बताया।
आईएमडी ने इन 150 वर्षों में न केवल करोड़ों भारतीयों की सेवा की है, बल्कि भारत की वैज्ञानिक यात्रा का भी प्रतीक बना है। इन उपलब्धियों पर आज डाक टिकट और विशेष कॉइन भी रिलीज किया गया है। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, तब भारतीय मौसम विभाग का स्वरूप क्या होगा, इसके लिए विजन डॉक्यूमेंट भी जारी हुआ है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वास्तविक समय की मौसम संबंधी नवीन जानकारी से कृषि तथा समुद्री अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की मौसम संबंधी प्रगति ने देश की आपदा प्रबंधन क्षमता को सुदृढ़ किया है। प्रदेश में आज मकर संक्रांति का त्योहार पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में आस्था की डुबकी लगाई। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान के बाद पूजा पाठ कर दान पुण्य भी किया। मकर संक्रांति पर प्रयागराज महाकुंभ में आज आस्था का जनसैलाब उमड़ा। घने कोहरे और कड़ाके की ठंड के बीच लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर पहला अमृत स्नान किया। एक रिपोर्ट।
महाकुंभ में भक्ति और अध्यात्म का अद्भुत संगम दिख रहा है। हर हर गंगे के जयघोष के बीच 13 विभिन्न अखाड़ों के साधु संतों ने गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम त्रिवेणी के विभिन्न घाटों पर आस्था की डुबकी लगाई। अमृत स्नान के दौरान नागा साधुओं का प्रदर्शन आकर्षण का केंद्र रहा। कभी डमरू बजाते हुए तो कभी भाला और तलवार लहराते हुए इन साधुओं ने अपनी परंपरागत युद्ध कौशल का भी प्रदर्शन किया। त्रिशूल और डमरू के साथ नागा साधुओं के प्रदर्शन ने महाकुंभ को धार्मिक उत्सव के साथ साथ प्रकृति और मनुष्य के मिलन के उत्सव के रूप में भी प्रतिष्ठित किया। महाकुंभ में विदेशी श्रद्धालुओं की सनातन धर्म के प्रति आस्था देखते ही बन रही है।
आज मकर संक्रांति की पावन दिवस पर मैं सोच रही थी संगम के जल में डुबकी लगाकर कि मैंने क्या किया मेरे पुराने जन्म में जिसकी वजह से मेरे को ऐसे पुण्य मिला।
नमस्कार, हेलो, क्रिस्टीन इज हियर। मेरा भारत महान। आई केम फ्रॉम रशिया, केम टू कुंभ मेला फर्स्ट टाइम इन लाइफ एंड दिस इज अ बिग कुंभ मेला, सो वी वेरी एक्साइटेड। इट्स लाइक यू नो, यू सी द रियल इंडिया एंड द ट्रू पावर ऑफ इंडिया इज देयर पीपल।
नेपाल, भूटान, जापान, रूस, ब्राजील, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन समेत कई देशों के श्रद्धालुओं ने अमृत स्नान किया। प्रशासन की ओर से मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए व्यापक प्रबंध किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं रजनीकांत चौधरी।
गया के तपोवन में मकर संक्रांति के अवसर पर आज से 3 दिवसीय तपोवन महोत्सव की शुरुआत हुई। महोत्सव का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने किया। महोत्सव के दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इधर बांका में आज से मंदार महोत्सव शुरू हो गया है। इसका उद्घाटन खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, भवन निर्माण मंत्री जयंत राज कुशवाहा और सांसद गिरिधारी यादव ने संयुक्त रूप से किया। वहीं औरंगाबाद के नवीनगर के पड़े में आज से 2 दिवसीय सोननद महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इस महोत्सव का उद्देश्य सोननद को संरक्षित करना है। प्रदेश के मौसम में एक बार फिर बदलाव हुआ है। आज सुबह से ही राज्य के अधिकतर हिस्सों में कुहासे की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 9.1 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ बांका राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। राजधानी पटना का न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में गिरावट आएगी। कल सुबह के समय कई जगहों पर घने कुहासे की भी चेतावनी है।
मौसम के पूर्वानुमान के अनुसार 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पश्चिमी, उत्तर मध्य तथा दक्षिण पश्चिमी के एक या दो स्थानों पर घने कोहरे छाए रहने की संभावना है, जबकि राज्य के शेष भागों में हल्के से मध्यम स्तर का कोहरा सुबह के समय छाए रहने की संभावना है। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण न्यूनतम तापमान में थोड़ी गिरावट होने की संभावना है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह को कथित तौर पर लॉरेंस विश्नोई की रोह से जान से मारने की धमकी मिली है। श्री सिंह ने बताया कि एक फोन कॉल के माध्यम से उनसे 30 लाख रुपए की मांग की गई, नहीं देने पर जान से मारने की धमकी मिली है। श्री सिंह ने बताया कि उन्होंने पुलिस महानिदेशक को पूरे घटनाक्रम से अवगत करा दिया है। मामले की जाँच जारी है। कृषि मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि ड्रोन की खरीद पर किसानों को 60% या अधिकतम 3,65,000 रूपए का अनुदान मिलेगा। श्री पांडे आज पटना के ज्ञान भवन में ड्रोन की उपयोगिता पर आधारित प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे।
किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, जो किसान ड्रोन खरीदना चाहे तो ड्रोन खरीदने पे 60% राशि या अधिकतम 3,65,000 रुपया वो सरकार अनुदान दे रही है। वो यदि खेती में ड्रोन के माध्यम से छिड़काव करते हैं खादों का तो 240 रुपया प्रति हेक्टेयर भी अनुदान हम दे रहे हैं। तो इन आधुनिक तरीके से हम काम करें इसके लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, और जितना ही ज्यादा हम तकनीक और आधुनिकता का इस्तेमाल करते हैं तो उतना ही हमारा किसानों का लाभ भी बढ़ता है, ये हम लोग देखते हैं।
उद्योग मंत्री नीतीश मिश्र ने कहा है कि मधुबनी में एक नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जाएगी। झंझारपुर से पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग के अनुकूल माहौल बना है।
स्थापना उद्योग विभाग के माध्यम से किया जाएगा, जो पूरे इस जिले के औद्योगिक वातावरण, जो बिहार में बढ़ रहा निवेश है, जो एक बहुत बड़ा माहौल बनता जा रहा है। 1,81,000 के निवेश के प्रस्ताव बिहार को प्राप्त हुए हैं जो बिहार इन्वेस्टर्स मीट में, तो एक नए वातावरण में मधुबनी ने इतना एक नए औद्योगिक क्षेत्र का बनना अपने आप में जिला के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। और कुछ दिन पूर्व ही सीतामढ़ी में और वैशाली में भी नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए राज्य मंत्री परिषद से राशि की स्वीकृति हुई है, जो गोजन के लिए हम लोग राशि रिलीज करेंगे।
आज सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस है। इस अवसर पर दानापुर स्थित बिहार रेजिमेंट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पूर्व सैनिकों और शहीद जवानों की वीर नारियों को सम्मानित किया। श्री खान ने कहा कि वीर सैनिकों के अदम्य साहस और शौर्य के कारण आज देश की सीमाएं सुरक्षित हैं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में इस उद्देश्य को अपने से ज्यादा उसके लिए वो जान दे देते हैं। सिर्फ अपनी क्षमता और ऊर्जा नहीं लगाते, समय नहीं लगाते, बल्कि अपनी जान दे देते हैं उसके लिए। तो ये सौभाग्यशाली लोग हैं और हमारा सौभाग्य है कि इनके अंदर त्याग और बलिदान का इतना बड़ा भाव है। मैं इन सबको सैल्यूट करता हूँ।
नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर इस बार गणतंत्र दिवस परेड में 8 वर्षों के बाद बिहार की झांकी दिखेगी। सूचना और जनसंपर्क विभाग के मंत्री महेश्वर हजारी ने बताया कि स्वर्णिम भारत विरासत और विकास की थीम पर बिहार की झांकी को रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दी है।
बिहार के लिए इस बार स्वर्णिम समय है। बहुत दिनों के बाद बिहार में बिहार की झांकी को जो दिल्ली में होने वाला है 26 जनवरी को उसे प्रस्तुत किया गया है। इस गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के अवसर पर झांकी के लिए निर्धारित विषय वस्तु स्वर्णिम भारत विरासत एवं विकास की थीम पर रक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड के अवसर पर बिहार सरकार की झांकी को प्रदर्शन हेतु चयनित किया गया।
पटना के वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार ने 4 पुलिसकर्मियों को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है। जमुई जिले के परहट थाना क्षेत्र के भंडरा गांव में अपहरित नाबालिग को बरामद करने गई पुलिस टीम पर असामाजिक तत्वों ने हमला कर दिया। इस घटना में 2 दारोगा सहित 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन मौसम का शुभारंभ किया। कहा यह देश को मौसम की हर स्थिति से निपटने में सक्षम और क्लाइमेट स्मार्ट बनाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। मकर संक्रांति का त्योहार आज पारंपरिक आस्था के साथ मनाया जा रहा है। श्रद्धालुओं ने गंगा सहित अन्य पवित्र नदियों और सरोवरों में लगाई आस्था की डुबकी। प्रयागराज महाकुंभ में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लगभग 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी संगम पर किया पहला अमृत स्नान। और प्रदेश के मौसम में एक बार फिर आया बदलाव। दिन भर बनी रही कुहासे की स्थिति, अगले 3 दिनों के बाद ठंड में और बढ़ोतरी का पूर्वानुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।